12 और मौतों के साथ न्यू साउथ वेल्स में आए कोरोना के 787 नए स्थानीय मामले। विक्टोरिया में टीकाकरण तेज करने के लिए जीपी और फार्मेसियों के लिए अनुदान राशि की घोषणा। और इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा। अब खबरें विस्तार से। न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर ग्लैडिस बैरी जैकलिन ने कोविड-19 नियमों में ढील देने के लिए 3 चरण के रोड मैप की घोषणा की है। राज्य सरकार का कहना है कि जब 70% टीके के लिए योग्य आबादी टीके की दोनों खुराक प्राप्त कर लक्ष्य पूरा कर लेगी तो पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों के लिए लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि न्यू साउथ वेल्स में कोरोना मामलों के स्थिर होने के बाद अब रोज आने वाले स्थानीय मामले कम होने लगे हैं और स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में 787 स्थानीय मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ इस दौरान 12 लोगों के मरने की भी खबर है। प्रीमियर बैरी जैकलिन का कहना है कि जब राज्य के 80% लोगों को टीके की दोनों खुराक मिल जाएंगी तब न्यू साउथ वेल्स के आसपास यात्रा की अनुमति दी जाएगी।
Life will feel getting back to normal, and obviously a number of things kick in at 80%, including community sport, regional travel, and a whole range of other things. And then on the 1st of December will be the final stage of reopening where unvaccinated people will be able to participate.
विक्टोरिया में जीपी यानी कि सामान्य चिकित्सकों और सामुदायिक फार्मेसियों को राज्य के टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना बनाई जा रही है। प्रीमियर डेनियल एंड्रयूज ने $4,000 तक के 100 से अधिक अनुदान और $10,000 के 10 अनुदानों की घोषणा की जो कोविड-19 हॉटस्पॉट में काम करने वाले लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। इस बीच स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में रोज आने वाले स्थानीय कोरोना मामले अभी भी 700 के आसपास बने हुए हैं। इसी के साथ पिछले 24 घंटों में एक मौत की भी खबर है। राज्य प्रीमियर डेनियल एंड्रयूज का कहना है कि क्योंकि आने वाले समय में राज्य में वैक्सीन की अधिक खुराक उपलब्ध होंगी इसलिए अनुदान फार्मेसियों को लंबे समय तक संचालित करने या अधिक जगहों को किराए पर लेने में मदद करेगा।
I've had a couple of pharmacists put it to me that they haven't got enough room in their shop, but if they had a bit of help, then they could rent some space next door or just down the road, and they'd be able to run, if you like, their own vax hub in that space. If we can help our GPs who are doing an amazing job and help our community pharmacists who've been doing amazing work and are now moving into a really intense phase with these hundreds of thousands of Moderna doses arriving, then we'll get more jabs into more arms.
Queensland में स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि 80% टीकाकरण प्राप्त करने के बाद भी इस बात का आश्वासन देना मुश्किल है कि क्रिसमस से पहले सीमाओं को फिर से खोला जाएगा। आपको बता दें कि 21 जुलाई से न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के अधिकांश इलाकों के लिए क्वींसलैंड राज्य की सीमाएं बंद हैं। इस बीच सैकड़ों क्वींसलैंड निवासी बाहर फंसे हुए हैं और अपनों से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रीमियर एनेस्टेशिया प्लाशे का कहना है कि वो संशोधित डॉटी मॉडलिंग का इंतजार कर रही हैं जो इस शुक्रवार की राष्ट्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद जनता के लिए उपलब्ध होगी।
Well, that's going to depend on the modeling and our discussions at National Cabinet this weekend. But as I said to you, and I'll say it again, I'm very humbled by the Queenslanders that have been coming up to me and speaking to me about how they're enjoying doing normal things. They're going to the shops, they're going to the restaurants, they're going to cafes.
ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी के मुख्यमंत्री एंड्रयू बार का कहना है कि गुरुवार यानी कि 14 अक्टूबर को क्षेत्र का लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार जारी ताजा आंकड़ों में पिछले 24 घंटों में ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में कोरोना के 19 स्थानीय मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में 12 साल से अधिक उम्र के टीके के लिए योग्य लगभग 60% लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। आपको बता दें कि इस शुक्रवार यानी कि 1 अक्टूबर से 2 लोग दूसरों के घर में जा सकेंगे और व्यायाम और आउटडोर मनोरंजन की समय सीमा को पहले से दोगुना कर अब 4 घंटे कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री एंड्रयू बार का कहना है कि शुक्रवार 15 अक्टूबर से उपायों में और ढील दी जाएगी।
5 people will be able to visit another household at any one time, and 25 people will be able to gather outdoors. Licensed venues, cafes and restaurants will be able to operate seated service at a maximum capacity of 25 across a venue.
अब खबरें भारत से। भारत में नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन अभी भी चल रहा है। पानीपत में एक किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को तीन कृषि कानूनों को जल्द से जल्द निरस्त करना चाहिए।
हमने सरकारों का आए के कान खोल कर सुनवा, ये किसान 10 साल भी आपके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा तो ये किसान 10 साल भी भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। इनको भारत में राज करना होगा, उनको कानून वापसी लेना होगा। ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे, संघर्ष होगा। ये किसान आपको छोड़ेगा नहीं। अब ये भारत सरकार सुनने कान खोल गए, इन कानूनों को वापसी ले लो, जितना जल्दी ले लोगे आपके फायदे में होगा, नहीं तो ये आंदोलन पूरे संयुक्त मोर्चे के लोग पूरे देश भर में जाएंगे, मीटिंगें करेंगे, आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आपके जहां जहां चुनाव होंगे, आपके चुनाव पे वोट की चोट करने का काम करेंगे।
हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो किसानों से बातचीत के लिए तैयार है और वो चाहती है कि किसान आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो। कुछ दिनों में गांधी जयंती आने वाली है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से खादी उत्पादों को गांधी जयंती पर बड़े उत्साह के साथ खरीदने का आग्रह किया।
ऐसे कई अवसर आए हैं जब दिल्ली के खादी शोरूम में एक दिन में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार हुआ है। मैं भी फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2 अक्टूबर पूज्य बापू की जन्म जयंती पर हम सब फिर से एक बार एक नया रिकॉर्ड बनाएं। आप अपने शहर में जहां भी खादी बिकती हो, हैंडलूम बिकता हो, हैंडीक्राफ्ट बिकता हो, और दिवाली का त्यौहार सामने है, त्योहारों के मौसम के लिए खादी, हैंडलूम, कुटीर उद्योग से जुड़ी आपकी हर खरीदारी वोकल फॉर लोकल इस अभियान को मजबूत करने वाली हो, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली हो।
भारत में पानी के स्रोतों को संरक्षित करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कई योजनाएं चल रही हैं। इस विषय पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देशवासियों से कैच द रेन वाटर कंजर्वेशन मूव में भाग लेने का आग्रह किया।
जल ही जीवन है और जल का और नदियों का महत्व क्या है, कैच द रेन प्रोग्राम के माध्यम से किस तरह से हम लोग एक भूमिका निभा सकते हैं पानी को रोकने की भी, बचाने की भी, जन जन तक पहुंचाने की भी। और देश भर में ऐसे बहुत अनूठे प्रयास हुए, उसका उल्लेख भी उन्होंने किया। उन लोगों के बारे में भी जिनको शायद स्थानीय स्तर पर भी लोगों को पहचान ना दी गई हो, देश के प्रधानमंत्री जब उनके बारे में बात करते हैं तो करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिलती है अपने अपने क्षेत्र में कुछ करने की। मैं भी निवेदन करता हूं सबसे, कैच द रेन प्रोग्राम में जुड़िए, अपने अपने क्षेत्र में जल संरक्षण में जुड़िए, नदियों को बचाइए, पानी को बचाइए, क्योंकि जल ही जीवन है।
अब सुनते हैं डॉलर का हाल। आज यानी सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.70 रुपये और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 73 सेंट्स थी। अब खबरें खेल जगत से। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। मोइन अली अब टेस्ट क्रिकेट को छोड़कर वनडे और T20 फॉर्मेट पर फोकस करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच भारत के खिलाफ 2 से 6 सितंबर 2021 के बीच ओवल के मैदान पर खेला था। 34 साल के ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर मोइन अली अपने करियर को और लंबा करना चाहते हैं, ऐसे में उन्होंने 64 टेस्ट मैचों के बाद ही संन्यास का ऐलान कर दिया। मोइन अली फिलहाल IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं। कोलकाता और चेन्नई के बीच खेले गए IPL के रोमांचक मुकाबले में चेन्नई ने कोलकाता को 2 विकेट से हरा दिया। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 171 रन बनाए, जिसके जवाब में मैच की आखिरी बॉल पर चेन्नई ने यह मैच अपने नाम कर लिया। आपको बता दें कि चेन्नई को आखिरी ओवर में महज 4 रन की जरूरत थी, लेकिन सुनील नारायण ने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए ओवर में 2 विकेट चटका दिए, लेकिन वो मैच को बचा ना सके। चेन्नई की तरफ से फाफ डुप्लेसी ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए, वहीं कोलकाता की तरफ से सुनील नारायण ने 41 रन पर 3 विकेटें ली। अब लेते हैं मौसम की जानकारी। बात करते हैं कल यानी मंगलवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल की। शुरुआत करते हैं पर्थ से, जहां आसमान में आंशिक बादल रहेंगे। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में कल बारिश की संभावना रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में कल बारिश की संभावना रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 9 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न के बाद देश की राजधानी कैनबरा की, जहां कल आंशिक बादल रहेंगे। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 3 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं सिडनी की, जहां कल आसमान साफ रहेगा। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में कल आंशिक बादल रहेंगे। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में मौसम साफ रहेगा। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस। अंत में बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की। यहां का तापमान रहेगा अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको बता देते हैं, www.sbs.com.au/hindi।